और आले हामीन की जो फजीलत है ये आप जान ही चुके कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि आले हामीन दिबाजुल कुरान है। दिबाज कहते हैं रेशमी कपड़े को, और रेशम गोया कि जेबो जीनत, तो ये कुरान की जेबो जीनत है। फिर इसी तरह मसर बिन कदाम ने कहा कि ये अराइस हैं, और अराइस किसे कहते हैं, उरूस की जमा दुल्हनों को, और दुल्हने भी कैसी होती हैं, सजी बनी, जेवर भी और जीनत भी। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि हर चीज का एक मगज और खुलासा होता है, कुरान का खुलासा आले हामीम है या फिर हवामीम। और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कुरान की मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स अपने अहलो अयाल की रिहाइश के लिए जगह की तलाश में निकला तो किसी हरे भरे मैदान को देखकर खुश हो रहा है, अचानक आगे बढ़ा तो उसे ऐसे बागात मिले जिनकी जमीन में उगाने का मादा सबसे ज्यादा है। इनको देखकर कहने लगा, मैं तो बारिश की पहली हरियाली को देखकर ताज्जुब कर रहा था, ये तो उससे भी अजीब तर है, खूब तर है। तो उससे ये कहा जाएगा कि पहली हरियाली और सब सरसब्जगी की मिसाल आम कुरान की मिसाल है, और जो आले हामीम की मिसाल है वो रोजात की है, बागात के जरखेज हिस्सों की। इसीलिए अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया, जब मैं तिलावते कुरान करते हुए आले हामीम पर आ जाता हूं तो गोया इनमें मेरी बड़ी तफरी हो जाती है। तो ये थी आले हवामीम में से आखिरी सूरत। इस सूरत के बारे में एक और बात भी कि ये जो दीन है और अकीदा ये इंसानों ही का नहीं बल्कि जिन्नों का भी है, और इसमें जिन्नों का भी जिक्र मिलता है। इस सूरत के चार हिस्से हैं। पहले हिस्से में वही और किताबे इलाही के नुजूल की बहस है, दूसरे में अकायद के जाविये की वजह से इंसानी फितरत के दो नमूने दिखाए गए हैं, अच्छा और बुरा, तीसरे में कौमे आद का रवैया और अंजाम है, जबकि चौथे में कुरान के बारे में जिन्नात का रद्द अमल। और हमारा जो आज का सबक है आयत नंबर 1 से लेकर 20 तक, इसमें जो है वो सूरत के दो हिस्से हैं। तो आइए पहले हिस्से को शुरू करते हैं। हामीम, और जो पहला हिस्सा है आयत नंबर 1 से लेकर 14 तक, इसमें वही और किताबे इलाही के नुजूल की बहस है। हामीम, हामीम ये इसका कुरानी नाम है और ये हरूफ मुकत्तात हैं। इनके मानी अल्लाह ही ज्यादा बेहतर जानता है। तंजीलुल किताबी मिन अल्लाहिल अजीजिल हकीम, आगाज वही है जो कि पिछली सूरतों का है, और अल्लाह का बार बार ये कहना और तमहीदी कलमात में कहना, किसी चीज के आगाज के वक्त जो बात कही जाती है ना, तो वो बहुत अहम बात होती है जिसको हाईलाइट करना मकसूद होता है। तो तमहीदी कलमात में अल्लाह ताला कुरान का तारुफ करवा रहे हैं। वही और किताब की अहमियत और फजीलत जो है उसको सामने रख रहे हैं। सूरत जुम्र, सूरत मोमिन, हामिम सजदा, और पीछे आपने जो है वो जासिया में भी है ना, मुख्तलिफ सूरतों में जो पीछे आले हवामीम को आप देखें, पूरे कुरान को छोड़कर भी, जो कि पूरे कुरान में अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि कुरान मजीद बड़ी अहम किताब है। अल बकरा को ही ले लीजिए, जालिकल किताबु ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन, और यहाँ पे भी कुरान का तारुफ करवाया जा रहा है, और तारुफ करवाते हुए क्या बात कही जा रही है, तंजीलू। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी, आप पहले भी बारहा ये पढ़ चुकी हैं कि तंजील जो है इसके मानी क्या होते हैं, कि किताब को एहतमाम से और तदरीज से नाजिल किया गया। तो तंजील के अंदर, इस बाब के अंदर दो बातें खास तौर पर पाई जाती हैं, और उनमें से पहली बात यह है कि इसके अंदर तदरीज का मफहूम पाया जाता है। तदरीज कैसे कि दर्जा बदर्जा जरूरत के मुताबिक मक्की दौर में मदनी दौर में मुसलमानों की रहनुमाई के लिए कुरान को नाजिल किया गया। और दूसरी बात एहतमाम, एहतमाम के मानी क्या है कि इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं है, दर अंदाजी नहीं है, और अल्लाह ताला ने इसको बड़ी ही जो है वो हिफाजत के साथ वइन्ना लहू लहाफिजून आप पढ़ ही चुकी, इसको जो है वो नाजिल किया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का कलाम है। तंजीलुल किताबी, और आप देखिए कि किताब से पहले अलिफ लाम मीम ने इसको मारफा बना दिया, ये खास किताब है, ये आम किताब नहीं है। खास होने की वजह क्या है, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से है, इसको नाजिल करने वाला जो है वो अल्लाह है, जो कोई आम जात नहीं है। और फिर उस अल्लाह का तारुफ क्या है, अल अजीज अल हकीम, और अजीज जो है इसके मानी क्या है कि अल्लाह की जात जो है वो गालिब है, जबरदस्त है, इक्तदार वाली है। तो कुरान को जो कबूल नहीं करेगा तो याद रखे कि अल्लाह अजीज है, अल्लाह के कलाम को जो लोग झुठलाएंगे तो अल्लाह उनको पकड़ भी सकता है, पकड़ने पर जो है वो कुदरत रखता है, इक्तदार रखता है और गलबा रखता है। और उसके साथ साथ अगर वो पकड़ता नहीं है तो अल हकीम, हिकमत वाला है। कुरान पूरा का पूरा हिकमत की आयात है। और उसके साथ दूसरी बात क्या है कि दुनिया में लोगों को जीने की और अमल करने की एक मोहलत दी गई है, तो अल्लाह का फौरन जो है वो गुनाह करने पर पकड़ना ना पकड़ना, रसूल का इनकार करना, कुरान का इनकार करना, और फिर भी अल्लाह की तरफ से अजाब का नाजिल ना होना, ये उसकी हिकमत की बात है, ये उसके हिकमत के फैसले हैं। फिर उसके साथ दूसरी बात क्या हिकमत के अंदर कि इसकी आयात मुहकम हैं, पुख्ता हैं, ऐसे ही नहीं है बल्कि कैसी हैं, मुहकम हैं, पुख्ता हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, आप सोचें कि कितनी इसके अंदर रवानी है, कितना हुस्न है, कैसा प्यार है। हामीम, इस किताब का नुजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है। तो लोगों सोचो तो सही। फिर फरमाया मा खलकना समावाती वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक। और ये आयत भी आप कई दफा पढ़ चुकी हैं, तो आयात की तकरार उसमें एक हुस्न पैदा करती है, बात की अहमियत को वाजे करती है। अल्लाह ताला आफाक से दलाइल दे रहे हैं, और ये जो दलाइल दिए जा रहे हैं ये किस पर है, अल्लाह की हिकमत पर, आखरत के आने पर, कि अल्लाह हकीम है, नहीं बनाया हमने आसमानों को और जमीन को, वमा बैनहुमा और जो इसके दरमियान है। तो लोगों निजाम कायनात एक बेमकसद खिलौना नहीं है, एक हकीमाना निजाम है। अल्लाह लाजिमन नेक और बद, जालिम और मजलूम का फैसला करके रहेगा। मसलन आप देखें कि आप जो हैं, जैसे यहां पे रवाज है कि एक घर में होते हुए लोग दूसरा घर जो है वो बुक करवा लेते हैं, है ना, तो पहला तीन रूम का था तो फिर पांच का, फिर पांच के बाद सात का। और बाजू का जो है जब वो बुक करवाते हैं तो करते क्या है, पूरे घर वाले पैसे जमा करते हैं ना, बच्चे बेटियां बेटे मियां बीवी सब जॉब कर रहे हैं ताकि नए घर में मूव हो सके। तो ये जो मादियत है या ये दुनिया परस्ती है या ये जो घर बनाने का एक शौक है अपनी आराइश, और आप ये भी गौर करें कि दुनिया में हमने कितनी देर रहना है ना, और कितना हम दुनिया के लिए कोशिशें करते हैं, थोड़ा सा जैसे पानी का एक कतरा जो उंगली को लग जाए और बहता हुआ समंदर जो आखिरत है जहां हमेशा रहना है दारुल करार के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं। अच्छा, जब घर बुक करवाया जाता है तो किस लिए करवाया जाता है, अगर कोई खूब मेहनत मुशक्कत करके घर बनाए, सारे घर वाले ना सुबह देखी ना शाम, ना दिन देखा ना रात, ना खाने पीने की तरफ तवज्जो, ना पहने ओढ़ने की, ना आराम की, ना लज्जतें, ना तफरीहात, कुछ भी नहीं रह गया। बस डॉलर जमा, डॉलर बनाने की एक मशीन घर वाले बने हुए। अब उसके बाद घर बुक करवा लिया, अब वो बेकार पड़ा हुआ है, कोई उसमें जाता नहीं है, कोई उसमें रहता नहीं है, और वो किराए के घर में रह रहे हो, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे कि बेवकूफ है, कि इतना वक्त, इतने पैसे, इतना सरमाया, इतनी सलाहियतें, कुवतें लगाने के बाद घर बेकार क्यों है भाई? उसको आखिर बुक करवाने का मकसद क्या था? कोई मकसद तो होगा ना। मकसद क्या था कि आप रहते फिर आराम करते। आप कपड़े बनाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, जो भी पाकिस्तान से आता है, अम्मी एक फोन पर पूछती हैं, बेटा क्या चाहिए, अम्मी बस आजकल के फैशन के कपड़े भेज दीजिए। आप जाती हैं, आप कपड़े अटैची भर कर ले आती हैं, और फिर क्या होता है, आप उनको पहनती नहीं, और फिर आप अपने आप को क्या कहती हैं कि मुझसे बढ़कर बेवकूफ कौन होगा कि कपड़ों से अटैची भरे पड़े हैं और मैंने पहने नहीं, पता नहीं क्यों मैं इतने मंगवाती चली जाती हूं, ये अजीब बात है। तो हम जो भी काम करते हैं किसी मकसद के लिए करते हैं, बेकार नहीं करते। आप सुबह से उठी हैं, आप सफाई कर रही हैं और आप खाने पका रही हैं। अब ये कि घर में बच्चे और शौहर आता है और आप उनको खाना देती ही नहीं, बस आपने खाना पकाया और पकाती चली गई लेकिन उनके सामने पेश नहीं करती, तो खाना पकाने का मकसद क्या था? आप बाजार जाती हैं, यूं ही घूम फिर कर वक्त जाया करके आ जाए, कुछ खरीद करना लाए, तो आपका बाजार जाने का, वक्त जाया करने का मकसद क्या था? तो आप दुनिया में जो काम भी करते हैं बड़े अकलमंद हैं, आपसे बढ़कर कोई अकलमंद नहीं। डिग्री याफ्ता हैं, अल्लाह ने आंखें दी हैं, जमाना साज है, चलती हुई हवा का रुख बदलने की आप समझती हैं कि हम सलाहियत रखते हैं, आखिर हमसे बढ़कर कौन अकलमंद होगा? हम तो सोचते हैं कहाँ रहना है, कैसे रहना है, किस तरह रहना है, एक इस्लामाबाद में भी घर होना चाहिए, कराची में भी, लाहौर में भी, मरी में क्यों ना हो, बहरहाल। तो हम जो काम करते हैं एक मकसद के तहत करते हैं, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, अस्समावात, समा की जमा है, आसमानों को बनाया, और आसमानों की तादाद कितनी है कुरान से क्या पता चलता है? सात। और जमीन को बनाया, और जमीन भी कितनी है? सात। और यहाँ पे एक हमें नजर आ रही है वाहिद, लेकिन ये इसम जिन्स है, वमा बैना हुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, हुमा की तस्मिया की जमीर है, आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ है, जिसमें मैं भी आ गई, आप भी आ गए, जिसमें हशरातुल अर्द भी आ गए, दाबा भी आ गए, अनाम भी आ गए, दरख्त, नबातात, कायनात, सारा कुछ, मेरे और आपके जज्बात भी, मेरा और आपका दिल भी, कायनात का जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, दाना दाना, अल्लाह ताला कहते हैं जो कुछ बनाया, इल्ला बिल हकी, इनकी हकीकत क्या है? हक के साथ। ऐसे ही नहीं बेकार पैदा कर दिया, बल्कि बरहक पैदा किया है। और यहाँ पे हक का मतलब क्या है? आप जब भी किसी चीज के मतलब को आप समझना चाहें, उसकी गहराई को अपने अंदर जज्ब करना चाहें, तो उसके ऑपोजिट को जरूर देखा करें। हक का ऑपोजिट क्या है? बातिल। अबस नहीं बनाया, बेकार नहीं बनाया, किसी मकसद के साथ बनाया है। और फिर कितनी देर के लिए बनाया? वो अजल मुसम्मा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली आयत में, आयत के अगले हिस्से में क्या कहते हैं कि वक्त मुकर्रर तक, एक मुद्दत खास के तायुन के साथ इसको पैदा किया है। तो मानी क्या है? अजल के मानी क्या होते हैं? अजल का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है मुद्दत के लिए, वक्त के लिए। तो मौत कहते हैं ना, अजल मौत को भी कहते हैं, क्योंकि उसकी मुद्दत पूरी होगी दुनिया में रहने की, तो इसलिए अब उसकी अजल आ गई, उसकी मौत आ गई। और मुसम्मन मुकर्रर के लिए आता है ना, तो मुकर्रर जो है इसके मानी क्या है मुसम्मन के? आपने ये लफ्ज जो है पहले भी पढ़ा हुआ है, हाँ, कि ये जो लफ्ज जब मुसम्मन आता है तो क्या मानी देता है? मुसम्मन का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है, जैसे यूं आप अगर आप देखें तो इसम के लिए है ना, इसम के लिए भी आता है, तो इसम जो है उसके लिए जब आता है तो नाम, तो आप किसी का नाम मुकर्रर कर देते हैं, आप तय कर देते हैं, जैसे कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसका नाम मुकर्रर कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है कि इसका नाम अब ये है। इसी तरह चीजें जितनी भी हैं उनका नाम तय कर दिया जाता है, क्या इन चीजों का ये और ये और ये नाम है। तो सीन मीम वो जो है ये आसमान का रूट भी है और इस नाम का भी है। सुम्मिया हम आंगे सम्मा नाम रखना और इसी से मुसम्मन जैसे मुकर्रर कर दी गई। तो दुनिया की एक मुद्दत मुकर्रर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहे हैं कि लोगों तुम सोचो तो सही, तुम गौर तो करो कि आसमान और जमीन और जो कुछ भी इन दोनों के दरमियान है इन सब की एक मुद्दत मुकर्रर है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो है वो बगैर मकसद के इसको पैदा कर दिया, बल्कि क्या बता रहे हैं क्योंकि शुरू में अजीज कि वो ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और हकीम के मानी क्या है कि हिकमत है उसके अंदर उसके फैसलों में। और ये जो आयत है ये अल्लाह ये आसमान और जमीन की के बारे में ये अल्लाह की अदल पर दलालत करती है कि वो ऐसे कोई काम नहीं कर देता बल्कि उसके करने में हिकमत है। और हिकमत क्या है कि वो हिसाब किताब ले और अगर वो दुनिया में जो गुनाह करते हैं उनको फौरन पकड़ नहीं लेता और जो नेकियां करते हैं उनको फौरन नेकी का अजर नहीं देता। तो दरअसल इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने उसकी एक मुद्दत मुकर्रर कर दी है। तो उससे पहले जजा और सजा जो है वो नहीं की जा सकती क्योंकि वो हक के साथ करना चाहता है ना, अदल करना चाहता है। वल्लज़ीन कफरू अम्मा उन्ज़िरु मुरिदून, और वो लोग, और कौन से लोग? वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया। कुफ्र करने का मानी क्या है कि इनकार किया। किस चीज से इनकार किया? हक से। जो हकायक पैगंबर ने उनको बताए, जो दिखाए, जो अल्लाह की आयात उनके सामने जब पेश की तो उन्होंने पैगंबर का, तंजीलुल किताबी कुरान मजीद का और अल्लाह का इनकार किया। उन्होंने हकीकत पर पर्दा डाल दिया, छुपा दिया। अम्मा उस चीज से उन्ज़िरु जिससे वो डराए गए। तो अम्मा उन्ज़िरु कहते हैं कि इशारा है कयामत की तरफ कि उन्हें जो है वो कयामत से डराया गया था। पैगंबर ने किया क्या था? पैगंबर ने उन्हें यही तो बताया था कि दुनिया जो है ये बेमकसद नहीं है, ये किसी खलंडे का खेल नहीं है, ये गालिब मुक्तदिर हकीम जो है ये रब की जो है वो बनाई हुई कायनात है। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला हर एक को जो है वो पूछेंगे कि तुमने दुनिया में जो है वो क्या किया। तो वो लोग जिन्हें डराया गया था वो रिदून मुंह मोड़ लेते हैं। ऐन रादवात से है, अरब चुड़ाई के लिए आता है, और एराज करना, पहलूटे ही करना, अपना रुख मोड़ लेना। और अहले मक्का क्या करते थे? वो रसूल को देखते तो रास्ता बदल लेते, वो अपना मुंह छुपा लेते, अपने ऊपर पर्दे कपड़ा डाल लेते, वो जो है अपनी कानों में उंगलियां ठोंस लेते। तो उनको जो कयामत से डराया जाता और जब उनको बताया जाता कि अल्लाह एक है और जब उनको बताया जाता कि दुनिया जो है वो एक मकसद के लिए बनाई गई है और वो मकसद ये है कि कौन अच्छा बनता है, कौन अल्लाह का फरमा बरदार बनता है और कौन इनकार करता है। तो वो लोग जिन्हें डराया गया था मोरिदून, तो जो इनकार करते हैं ना, इनकार करने की दूसरी जो है सिफ्त क्या होती है? मोरिदून। असल में वो सुनना ही नहीं चाहते, एराज करते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि आप ये जो मुशरिकीन हैं आप इनसे क्या करें कि आप इनसे इनके रवैये पर दलील मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप मुशरिकीन से इनके शिर्क करने पर दलील मांगे। और दलाइल की तीन किस्मों का मुतालबा किया गया है। कुल इनसे कहिए, अरे तुम, क्या देखा तुमने, क्या गौर किया तुमने, मा तदऊना, जो तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिफा। तो मुशरिकीन से कहा जा रहा है कि अल्लाह को छोड़कर जिन देवियों को, जिन देवताओं को और जिन भी हस्तियों को तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। तो अब उसमें क्या है कि पहली दलील जो उनसे मांगी गई है ये है दलील अकली। अरूनी, दिखाओ मुझे। अरुणी जो है इसका रूट क्या है? रामदाया, इसी से अरैता है, इसी से जो है अरैतुम है, इसी से रोया है। और अरुणी, दिखाओ मुझे माजा खलकू, क्या पैदा किया उन्होंने, किन्होंने, उनके शरीकों ने, मिनल अर्दी, जमीन से। तो उनसे जो है पहली जो दलील मांगी जा रही है वो क्या है कि इन्होंने क्या पैदा किया है जमीन में, अम लहुम शिरकुन फिस समावात, क्या इनके लिए है शिरकत आसमानों में। तो जमीन से ही कोई हमें दलील ला दो कि वो किसी चीज के खालिक हैं, चलो फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो होते हैं, आसमान जो है उनमें से ही कोई दलील हमारे सामने लाकर पेश करो कि तुम्हारे बुतों ने, तुम्हारी हस्तियों ने जमीन या आसमान, इन दोनों के बनाने में या किसी भी चीज के पैदा करने में इनका भी कुछ हिस्सा है। तो ये है पहली दलील। और दलीले अकली, दलीलें दो तरह की होती है ना, एक तो ये कि अकल से ही देखकर कोई चीज दिखाकर हमें प्रूफ दे दो, और साइंस कहते हैं ना कि साइंस अब प्रूफ मांगती है। तो उस जमाने में भी जो है वो जो बात उनके सामने रखी गई और बात ये थी कि हमें जो है कोई प्रूफ पेश करो, कोई सबूत दो। अरे तुम, जो आपने पढ़ा उसके मानी क्या, अखबिरूनी, अरूनी, ये वो क्या करते थे, बुतों की पूजा करते थे, शख्सियात की पूजा करते थे। तो उनसे कहा जा रहा है कि आसमान और जमीन की पैदाइश का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा, कोई चीज हाथ लगाकर या वैसे हमें दिखा दो, दूर से, आसमान से दूर से हमें दिखा दो या जमीन से दिखा दो कि तुम्हारे इन बुतों ने भी कुछ चीज बनाई है, वो उसके खालिक है। फिर इसके बाद जो है वो दूसरी दलील, और ये दलीलें नकली है। दलीलें नकली किसे कहते हैं, एक है दलीलें अकली और दूसरी है दलीलें नकली। तो दलीलें नकली के बारे में आप ये बात याद रखिएगा कि दलीलें नकली जो है उस दलील को कहा जाता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई हो, जिसमें आसमानी किताबें जैसे तौरात, इंजील, जबूर या फिर कुरान वगैरह, तो गोया कि अल्लाह की किताबें जो हैं उनमें से उनमें वो दलील आई हो, और फिर वो जो है वो अल्लाह ताला ने जब रसूल को मुंतखब किया तो उसको वो किताब दी, तो उसमें वो दलील आ गई। तो गोया के पुराने जमाने से किताबों से वो दलील नकल होती चली आई, ठीक है ना, नकली, नकल से। और नकल से मुराद ये नहीं कि मैंने और आपने कोई किसी किताब में बात लिखी तो वो दलील नकली बन गई, नहीं। आसमानी किताब की कोई बात जो है जिसको पेश किया जाए, नकल किया जाए, तो उसको दलील नकली कहते हैं। गोया के अल्लाह ने उस किताब को नाजिल किया किसी पैगंबर के पास और उसमें से दलील। तो चूंकि अहले मक्का रसूल का इनकार कर रहे थे, रसूल कौन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब कौन सी थी जिसका इनकार कर रहे थे, कुरान मजीद। तो कुरान को तो मानने को तैयार नहीं थे, इससे दलील नहीं चाहिए थी, पिछली किताबों में से कोई दलील। तो दलील नकली से मुराद आसमानी किताब में से कोई दलील, ईतूनी। और ईतूनी जो है आगे इसके क्या आ रहा है, बा आ रहा है, और अगर होता सिर्फ अता तो मानी क्या थे, आना, आओ, लेकिन ईतूनी के बाद जब बा आता है तो लाने के मानी पैदा हो जाते हैं। ईतूनी बे किताबिन, लाओ मेरे पास कोई किताब, मिन कबली हाजा, इससे पहले की। हाजा की जमीर किसके लिए आई है, कुरान के लिए, कि इस कुरान से पहले की कोई किताब जो है उसमें से कोई नकली दलील पेश करो। फिर इसके बाद जो है तीसरी दलील दी जा रही है, तीसरी उनसे दलील मांगी जा रही है उनके शिर्क करने में और उसके प्रूफ करने में, क्या कहा जा रहा है फिर तीसरी, औ या असारतिन। असारतिन जो है इसके मानी है कि ये असल में हमजा सारा से है और मानी होते हैं कि वो रवायत या तहरीर जिसका असर बाकी रह गया हो। असर निशान के लिए आता है ना, आसार भी इसी से है कि अभी आसार बाकी हैं, कुछ निशान बाकी हैं, तो बचा हुआ महफूज। औ असारतिन मिन इल्मिन, या बचा हुआ या वो रवायत या तहरीर जिसका असर बाकी रह गया है मिनल इल्मी इल्म में से। तो इसके मानी क्या है? कहते हैं कि इसके मानी ये हैं कि एक तो है ना आसमानी किताब, वो है दलील नकली। तो मुफस्सरीन ये कहते हैं दूसरी दलील नकली है किसी पैगंबर का कॉल। तो ये जो है ना औ असारत मिन इल्मिन, इससे मुराद है किसी पैगंबर का कॉल। अब आप देखें कि किसी पैगंबर का कॉल जो सही सनद के साथ, मोतबिर सनद के साथ पैगंबर से साबित हो, तो कहते हैं असारत मिन इल्म से यही मुराद है। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि असारत मिन इल्म जो है इससे मुराद है जैसे किसी आलिम वगैरह का कॉल, के अल्लाह ताला की तरफ से जैसे भेजी हुई कोई किताब है वो तो है नकली दलील, और असारत मिन इल्म से मुराद है कि इल्म के बकिया से। आसार तो डेफिनेट फिर निशानी के लिए आएगा ना, आसार जो बाकी रह गए, तो बाकी चीज क्या रहती है? बकिया जो होती है, तो बकिया जो इल्म से रह गया, मुराद है कदीम जमाने के अंबिया और सुलहा की तालीमात का कोई ऐसा हिस्सा जो बाद की नस्लों को किसी काबिल एतमाद जरिए से पहुंचा हो। समझ आ गई बात की? तो ये जो तीसरी दलील मांगी वो क्या थी? अंबिया की तालीमात या सुलहा उल्मा जो नेक लोग थे उनकी तालीमात का बकिया कोई ऐसा हिस्सा जो बाद की नस्लों को किसी काबिल एतमाद जरिए से पहुंचा हो। क्योंकि ये ऐसा क्यों कहा गया कि या तो किताब में से नकल करो और या फिर अंबिया की तालीमात में से या सुलह की तालीमात में से, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर इन दोनों जराए में कोई मिलावट नहीं है, इसमें शिर्क का कोई शायबा नहीं है। तमाम कुतुब आसमानी भी तौहीद पेश करती हैं और अंबिया की तालीमात जो हैं या फिर मर्द सवाले या जो नेक लोग थे उनकी तालीमात भी जो है वो कुरान के अंदर ही तो होती हैं, है ना? तो असल बात क्या है कि ये तीन जो हैं वो दलाइल, तीन किस्म के दलाइल का मुतालबा किया गया, जिसमें पहली जो थी वो अकली दलील, दूसरी दलील नकली जो ईद पिउनी से शुरू होती है, और तीसरी जो है ये दलील भी दलील नकली है लेकिन इसमें अंबिया की तालीमात हैं या फिर नेक और सवालहीन की तालीमात का बकाया। इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। ये बात बड़ी खूबसूरत है कि अहले मक्का से पूछा जा रहा है कि अगर हो तुम सच्चे, तो गोया के अगर हो तुम सच्चे तो फिर कोई काबले एतमाद जरिए से जो नकल हुई हुई चीज है कोई किताब हो सकती है या फिर अंबिया की तालीमात का कोई बकिया हिस्सा या फिर कोई अकल से ही, क्योंकि कायनात का जर्रा जर्रा बोलता है कि इन सब चीजों का खालिक अल्लाह है। और मैं कल न्यूज देख रही थी और बता रहे थे कि जो है वो मिनीसोटा विनीपेग में जो है वो तूफान आ गया है, पानी पास ही जो रेड रिवर है वो घरों का रुख कर रहा है, और उसमें वो मुख्तलिफ जो दिखा रहे थे सीन के घरों में पानी है और बर्फ के ढेर हैं लेकिन दरिया का पानी उनको मेल्ट करता जा रहा है, और वो भी पानी के इजाफे का जरिया, बेसमेंट्स में पानी है और बहुत सी फौज जो है उसको बुलाया गया है, एमरजेंसी अनाउंस हुई है। और फिर उसमें ये जो न्यूज वाले हैं यही कह रहे थे कि निगाहें जो है ना आसमान की तरफ लगी हुई हैं, कि ये सारी जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी नजरें जो हैं वो आसमान की तरफ हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जब भी मुश्किल आती है, जब भी परेशानी आती है, तब हम अल्लाह को याद करते हैं ना, और उस वक्त तो गहरिया भी, पक्के से पक्का गहरिया भी फिर अल्लाह अल्लाह पुकारने लगता है, ओ माई गॉड, है ना? तो असल बात क्या है कि यहां पर भी जो है वो अहले मक्का उनके शिर करते थे, और बाज़ औक़ात इंसान बहुत सी बातें करता है उसके पास दलील कोई नहीं होती, तो किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी होता है कि वो कोई दलील या सबूत पेश ना कर सके। तो इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर हो तुम सच्चे, शिर्क के दावे में अगर तुम सच्चे हो। फिर इसके बाद जो है क्या फरमाया कि पमन अदल्लू, और कौन होगा ज्यादा गुमराह, मिम्मन यदू, इससे जो पुकारे, मिंदूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारता है गोया कि वो शिर्क करता है, तो इससे बढ़कर गुमराह और कोई हो नहीं सकता, वही सबसे बड़ा गुमराह है। मल्ला यस्तजीबू लहू, जो ना कबूल करे, जो ना जवाब दे लहू इसके लिए, किसके लिए, शिर्क करने वाले के लिए, जो अपनी देवी और देवताओं को पुकारते थे और मुख्तलिफ हस्तियों को अल्लाह के साथ शरीक करते थे, तो वो क्या करते हैं, वो जवाब नहीं दे सकते। कब तक जवाब नहीं दे सकते, इला यौमिल कयामती, कयामत के दिन तक, वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और जवाब तो क्या दें, वो तो उनकी दुआओं तक से बेखबर हैं। दुआइहिम दाल ऐन वाव, दुआ करना, पुकारना, बुलाना, असल में इस्तजाब का लफ्ज दो किस्म के मानी दे रहा है और दोनों यहां शामिल है। पहला मानी क्या है कि वो सुन ही नहीं सकता तो जवाब क्या देगा, जैसे पत्थर है, दरख्त है, अब उससे पूछा जाए कि जरा हमें बताओ कि हरम का रास्ता कहां है, किस तरफ है, तो कैसे जवाब देंगे, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते। और दूसरे मानी क्या है कि किसी की दुआ या पुकार को सुनकर इसको कबूल करना, एक तो यह ना सुनकर बस जवाब देना, और एक यह है सुनकर उसको कबूल करना और उस पर अमल करना। मसलन अगर कोई ये दुआ करता है, अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से शिफा दे दे, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, पुकार को कबूल करते हैं, पुकार को सुनते हैं, और फिर उस पर जो है वो अमल दरामद का इख्तियार भी रखते हैं। अब मुश्रिकों की इंतहाई गुमराही को यहां पे पेश किया जा रहा है कि वो अपनी दरखास्तें, अपनी चीजें ऐसी हस्तियों के सामने पेश करते हैं, नंबर वन जो सुन ही नहीं सकते, और नंबर दो सुने तो क्या, वो तो कबूल करने और उस पर अमल दरामद की जो है वो कोई भी ताकत ही नहीं रखते। मसलन आप देखें कि आपको यहां पे जो है वो फोन लगवाना है, और आप क्या करती हैं कि अपनी फोन लगवाने की एप्लीकेशन महकमा पुलिस को जाके दे आती हैं। अब आप देखें कि महकमा पुलिस वाले क्या करेंगे कि वो तो उसको गार्बेज कर देंगे, ये गलत जगह पर आ गई एप्लीकेशन, और आप साल हर साल इंतजार करेंगे कि फोन ही नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं फोन लगा। तो यही हाल मुशरिकीन का है कि अल्लाह के सिवा दूसरों को जो है पुकारते हैं, तो वो उनकी पुकार का कैसे जवाब दें, क्योंकि गलत जगह जो है वो दरखास्त जमा करवाई है उन्होंने। और फिर इसके बाद जो है अल्लाह ताला ने जो ये कहा कि वो जवाब भी नहीं देते और वो उनकी दुआओं से जो है वो गाफिल हैं। और एक बात और आप याद रखिएगा कि मिन दूनिल्लाह, ये आयत नंबर 5 में जो बात है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के सिवा, इससे क्या मुराद है, अल्लाह को छोड़कर, इससे मुराद मुफस्सरीन ये कहते हैं कि बेजान किस्म के माबूद नहीं, बल्कि फौत शुदा बुजुर्ग, क्योंकि वो जो कब्रों में चले गए थे वो उनके बारे में ये समझते थे कि ये हमारी जो है वो बिगड़ी संवार सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये नबी, पीर, औलिया हैं, और फिर ये अल्लाह के सामने हमारी जो है वो सिफारिश कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नेक लोग या फिर पैगंबर, जिनके बारे में वो सारी जिंदगी खुद तुम्हें तौहीद की दावत देते रहे और तुमने उल्टी गंगा बहा दी कि उनके मरने के बाद, उनके दुनिया से जाने के बाद उन्हीं को पुकारना शुरू कर दिया। तो ये बात क्या है, ये बड़ी अजीब बात है। वाइजा होशीरा, और जब जमा किया जाएगा, होशीरा के अंदर कितने मानी पाए जाते हैं, 3। पहला क्या है, तजम्मो, तजम्मो के मानी होते हैं जमा करना। दूसरा सूख, सूख जो है हांकना, जैसे किसी को जमा किया जा रहा है और वो जमा नहीं होना चाह रहे, अब उनको हांका जाए, अब फरिश्ते लगे हुए हैं, क्योंकि मुजरिम जो है ना वो कहेंगे या वही लताना, अरे हमारी बर्बादी, किसने हमें हमारी कब्रों से उठा खड़ा किया, है ना, मैं मर का देना कि किसने हमें हमारी कब्रों से जो है वो उठा खड़ा किया, तो वो तो जाने नहीं चाहेंगे। तो अब क्या किया जाएगा, फरिश्ते हैं जो उनके पीछे लग रहे हैं, उनको हांक रहे हैं। तो पहला तजम्मो, उनको जमा किया जाएगा, जमा नहीं होना चाहेंगे, उठना नहीं चाहेंगे, रोए धोएंगे, लेकिन उनको जमा किया जाएगा, हांका जाएगा। और नंबर तीन फिर बासा, कि उनको ले जाया जाएगा, उठाकर जो है जैसे हांक कर खींच कर मुख्तलिफ तरीके से उनको ले जाया जाएगा हशर के मैदान की तरफ। वैजा होशिर नासू, और जब लोगों को जमा किया जाएगा, कानू लहुम आदान, फिर फरमाया वो होंगे इनके लिए दुश्मन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मुतवज्जो करते हैं इंसान से, कहते हैं कि इंसान जरा गौर तो कर कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे, उस वक्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन होंगे। और क्या करेंगे वो लोग, वह कानू बे इबादत हिम काफिरीन, और इनकी इबादत के मुनकिर होंगे। ये कौन लोग हैं जो अपने पुकारने वालों के भी मुनकिर हैं और इनकी इबादत जो है वो उसका भी इनकार करने वाले हैं। ये वो तमाम लोग जिनको दुनिया में जो थे वो उनके मरने के बाद पीछे वाले उनको जो है उनको उन्होंने जो है वो अल्लाह के इख्तियारात अल्लाह की सिफात में जो है वो शरीक कर लिया। तो ये जो है वो इस उनकी इबादत का और उनके पुकारने का इनकार करेंगे। आप पढ़ ही चुकी जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला जब उनसे पूछेगा कि क्या तुमने लोगों को ये तालीम दी थी कि मुझको और मेरी माँ को माबूद बना लो, तो ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैं ऐसी बात कैसे कह सकता था जिसका मुझे हक भी ना था, मैंने इनको वही बात बताई थी जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, मेरे बाद उन्होंने क्या किया मुझे इसकी खबर नहीं। फिर इसी तरह सूरत अल फुरकान में आयत 17 और 18 में आप पढ़ सकती हैं, वयौम यहशुरहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाहि फयकूलु अअंतुम अदललतुम इबादी हाउलाई अम हुम दल्लु सबील कालू, वो कहेंगे सुबहानका मा काना यंबगी लना अन नत्तखिज़ा मिन दूनिका मिन औलिया वलाकिन मत्ताअतहुम व आबाअहुम हत्ता नसु ज़िक्र व कानू क़ौमन बूरा। तो क्या जवाब देंगे जब अल्लाह पूछेगा कि तुमने ऐसा कहा था, तो जवाब देंगे कि तू पाक है, हमारे लिए ये ज़ेबा न था कि हम तेरे सिवा दूसरों को कारसाज बनाते, बल्कि हुआ यूं कि तूने इनको और इनके बाप दादा को अपनी नेमतों से नवाजा यहां तक कि वो तेरी याद दहानी भूल बैठे और हिलाक होने वाले बन गए। तो अंबिया और सालहीन दोनों जो है वो जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर डाल देंगे जिन्होंने उनकी तालीम के खिलाफ जो है उनको अल्लाह का शरीक बना डाला और उनकी परस्तिश करते रहे। इसी तरह दूसरे माबूद जैसे जिन्नात हैं शयातीन हैं, वो भी तो अपने परस्तार से ऐलान बरात कर देंगे। मुख्तलिफ सूरतों में आप ये तफसीलात पढ़ चुकी हैं, सूरत कसस आयत 62 से 64 में भी है ना, तो जगह जगह ये आपने आयात पढ़ी हैं, और यहां पे भी आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6 इन आयात में यही बात जो है वो बताई जा रही है कि ये ना तो जवाब दे सकते हैं जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, और बल्कि उल्टा कयामत के दिन जब ये सब जमा होंगे तो वहां पे वो इनके लिए दुश्मन बन जाएंगे। आदान अदू से है ना, इसकी जमा है आदा, इनकार करेंगे और इनकी इबादत यानी इनकी परस्तिश जो है इसका इनकार करेंगे। तो आप देख लीजिए कि शिर्क करने वाले जो हैं उनकी उनको मिलेगा क्या, वो तो समझते रहे कि हमें अल्लाह से बचा लेंगे और वहां पे उल्टा जो है वो इनके लिए दुश्मन बन जाएंगे। तो इससे बढ़कर फिर गुमराह और कौन हो सकता है। फिर इसके बाद जो है आप देखिए तो आयत नंबर 7 जो है इसमें क्या बात पता चलती है कि अहले मक्का क्या करते थे, कुरान से फरार के लिए बहाने तलाश करते थे। तो आयत नंबर 7 से कुरान और वही जो है उसकी अहमियत उसका नजूल और दूसरी तरफ अहले मक्का का रवैया क्या फरमाया, वाइजा तुतला अलैहिम और जब पढ़ी जाती हैं इन पर आयातुना हमारी आयात, इन्हें जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं। अहले मक्का को अल्लाह की आयात कौन सुनाता था, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा सुनाते थे। और अहले मक्का जब वो आयात को सुनते और आयात भी कैसी अल्लाह की आयातुना, और दूसरी उसकी खूबी क्या है बैयनातिन रोशन, बैयनातुन की जमा है वाजे खुली, तो खुद खुली थी वाजे थी और फिर क्या है लाजिम और मुतद्दी, دوسروں کو بھی واضح. قال الذين کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا, تو انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں, للحق حق کے لیے. حق کس کے لیے آیا, قرآن کے لیے, کہ وہ آیات بینات کو کیا کہتے ہیں, لما جا ہم جب یہ ان کے پاس آ گئی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, کسی کو حق پتہ ہی نہ چلے تو کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے تو ٹھیک, ایک بات سمجھ میں آتی ہے. جب حق آ گیا, لما جا ہوں, جب حق انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا, جب انہوں نے کانوں سے سن لیا, تو لما جا ہوں کیا جو الفاظ ہے نا, وہ ان کے فعل کی شناخت کو, ان کے فعل کی قباحت کو واضح کر رہے ہیں, کہ انہوں نے اس وقت اس کے بارے میں یہ کہا جب حق ان کے پاس آ گیا, حق تھا, ہذا سحر مبین, کہ یہ جادو ہے کھلا. آنے کے بعد انہوں نے ایسی باتیں کی, انہوں نے مغالطہ دینے کی کوشش کی اور اتنی بڑی بات کہی اللہ کے قرآن کے بارے میں کہ ہذا سحر مبین, یہ جادو ہے کھلا. تو یہ تھا ان کا پہلا بہانہ, پہلا ان کا اعتراض. دوسرا اعتراض یہ کیا کرتے تھے, ام یقولون افترا, یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو, اس نے بنا لیا ہے اس کو. کل کہہ دیجئے, ان افتریتہو, اگر میں نے بنا لیا ہے اس کو, فلا تملکون علی, تو تم اختیار نہیں رکھتے میرے لیے, من اللہ شیعہ, اللہ سے کچھ بھی. ہوا عالم بما تفیدون فیہ, وہ زیادہ جانتا ہے, بما ساتھ اس کے جو, تفیدون تم گفتگو کرتے ہو, فیہ اس کے بارے میں, کس کے بارے میں, قرآن کے بارے میں. اور یہ پہ جو تفید لفظ ہے, فا یا دعات سے ہے, اور اس کے معنی کیا ہیں, اس کے معنی ہے پانی کا اچھل کر بہ نکلنا, آنسوؤں کا بہنا. اور آپ دیکھیں کہ آنسو جب آنکھوں میں بھر جاتے ہیں تو خود بخود اچھل کر باہر آ جاتے ہیں نا, تو آنسوؤں کا بہنا. اسی طرح اگر برتن لبالب بھرا ہوا ہو, یہاں تک کہ وہ پانی سے نیچے گرنے لگے, چھلکنے لگے, اس کے لیے بھی آتا ہے ان افیدو علینا من الماء. یہ کس نے کہا تھا, کچھ یاد ہے کس نے کہا تھا, کہ کچھ پانی ہماری طرف بھی ڈال دو, سورۃ اعراف. شاباش, سورۃ اعراف آیت نمبر 50 میں جو ہے وہ جہنمی جو ہیں جنت والوں سے کہتے ہیں کہ کچھ پانی ہماری طرف بھی ڈال دو. پھر آپ نے پڑھا تھا سورۃ توبہ میں بھی تفیدو من الدم ہے نا, ہاں, اور نجاشی کے لیے بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا کہ اس کی مطلب نیک لوگ جو ہیں ان کی آنکھوں سے قرآن کی تلاوت سن کر آنسو بہ نکلتے ہیں. اچھا, تو اصل بات کیا ہے کہ افادہ, فادہ یا فید کا لفظ جو ہے کسی چیز کا بسہولت جاری ہونا, پانی کا کسی جگہ سے اچھل کر بہنا, کسی چیز کا کثرت سے ہونا. اور اسی طرح یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کہ جیسے ہجوم جا رہا ہے نا, تو آپ بھی ہجوم کے ریلے میں جا رہے ہیں. آپ پڑھ چکی سورت البقرہ آیت 199 میں, ثم افیدو من حیث افاد الناس, پھر تم وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. اب انسانوں کا ایک ریلا ہے, واپس آ رہا ہے میدان منا سے, تو تم بھی آگے تک جا کر آؤ, یہ نہیں کہ جاؤ ہی نہ, یا عرفات کے میدان میں اہل مکہ نہیں جاتے تو عرفات تک جاؤ, پھر ہجوم کے ریلے میں تم بھی بہتے چلے واپس آؤ. اچھا, اسی طرح پھر یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جیسے باتیں ہو رہی ہوں تو باتوں میں بہتے چلے جانا, باتوں میں مشغول ہونا. تو باتوں میں کیسے مشغول ہوتے تھے, مثلا کہتے ہیں کہ جیسے کسی بات میں نکتہ چینی کرتے کرتے اس حد تک بڑھ جانا کہ رائی پر بت بن جائے, کہ ذرا سی بات ہی پھر اگلے زمانے میں کوئی اس پر بت بنا دے, رائی کا پہاڑ بنا دیا جائے, ہے نا. اور اس کے معنی کیا ہے, آگے تک جانا, کسی چیز میں آگے تک چلے جانا. تو بہت زیادہ باتیں کرنا, نکتہ چینی کرنا, باتوں میں مشغول ہونا, تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ مشغول ہونے کے لیے قرآن میں چار لفظ ہیں اور اس کا تیسرا درجہ ہے افادہ, کہ مشغول ہونا, ایسی مشغولیت کہ انسان خود کو بھی فراموش کر دے. تو اتنی باتیں بناتے تھے قرآن کے بارے میں, رسول اور اسلام کے بارے میں, اس کے انکار کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے کہ جو تم گفتگو کرتے ہو قرآن کے بارے میں، کفا بہی وہ کافی ہے ساتھ اس کے شہیدن گواہ بینی میرے درمیان و بینکم اور درمیان تمہارے، وہو الغفور الرحیم اور وہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 8 جو ہے اس میں پھر نچوڑ کے طور پر کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے، آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 8 میں ہے کیا کہ قرآن جب اہل مکہ کے پاس آیا تو اس کے اعجاز، اس کی قوت تاثیر، اس کا دلوں کو مسخر کرنا، اور ہر کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو بچا ہو مکہ والوں کا، کسی کا شوہر تو کسی کی بیوی، کسی کا بیٹا تو کسی کی بیٹی، کسی کا غلام اور کسی کی جو تھی وہ لونڈی، تو مختلف لوگ حتیٰ کہ ان کے اشراف اور سرداروں میں بھی یہ جو تھا وہ اثر کرنے لگا۔ تو اب پہلے تو کیا کہا انہوں نے، حاضر سحر مبین، اب اس سے جب بات نہیں بنی تو انہوں نے ایک اور الزام گھڑا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کیا کہا، افتراہو، تو افترا کے معنی آپ سمجھ لیں اس کا روٹ کیا ہے، فارایا، فارایا کے معنی ہوتے ہیں چمڑے کا سینہ، اور جیسے چمڑے کو سینہ جیسے اصلاح کے لیے جو ہے وہ اس کو کاٹنا، کیونکہ چمڑا جب جانوروں کے اوپر سے اس کی کھال جب اتاری جاتی ہے تو ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے نا، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے کاٹنا ہے نا۔ اب دیکھیں کہ باب افعال، کیونکہ ابواب میں نا معنی بدل جاتے ہیں، باب افعال میں جو ہے افرا جو ہے کیا ہے، یہ مزید کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے نا ثلاثی تین میں سے، اور ایک ہوتا ہے پھر مزید، مزید کا صیغہ ہے، تو اس میں جو ہے یہ سلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سلب کا معنی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو روک دینا، کھینچ لینا، ختم کر دینا، تو یہ معنی جو ہے نا مجرد میں تو یہ معنی تھے کہ اصلاح کے لیے چمڑے کو جو ہے وہ کاٹنا، لیکن باب افعال میں جب یہ آیا، جب افرا نا الفاظ زیادہ ہو گئے نا، افرا فریہ نہیں افرا، تو کیا ہوا کہ یہ معنی جو تھے جو، کیونکہ باب افعال میں مزید کا صیغہ آیا تو سلب کر لیے گئے، چمڑے کو خراب کرنے کے لیے کاٹنا، ٹھیک ہے، دوسرے معنی پیدا ہو گئے کہ چمڑے کو خراب کرنے کے لیے کاٹنا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ باب افتعال میں اگر یہ چلا جائے، اب یہاں پہ باب اصل میں افتعال ہے، افترا ہے نا، افترا تو افتعال ہے باب، باب افترا میں اصلاح اور بگاڑ دونوں کے معنی دیتا ہے، اصلاح کے بھی بگاڑ کے بھی، لیکن زیادہ تر بگاڑ کے معنی دیتا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اور عام طور پہ پھر آپ دیکھیں کہ کبھی یہ ہے کہ تم نے جھوٹ کے لیے آتا ہے، اور کبھی اس کے لیے آتا ہے کہ گھڑ لی ہے یہ بات، اور کسی کوئی بات بنا لی جائے تو اس کے لیے آتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ معنی آتے ہیں نا، اب آپ معنی کی خاصیت کو بدل دیتے ہیں، وہ بعض اوقات تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے انشاءاللہ اب آپ کو بھی یاد کرنا ہے، اور یہاں پہ اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اتنا آپ یاد رکھیں کہ معنی کیا ہے، کہ اہل مکہ نے ایک اور الزام لگایا، اور وہ الزام یہ تھا کہ قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ رسول نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اہل مکہ سے کہتے ہیں کہ کیسے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ سے کہیے کہ اگر میں نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، قل ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، قرآن میں نے خود بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ یہ جو آیت ہے کہ تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے، اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہیں کہ اگر میں نے قرآن کو گھڑا ہے تو یقیناً میں بہت بڑا مجرم ہوں، اور اتنے بڑے جرم پر اللہ مجھے چھوڑ تھوڑی دے گا، پھر تو مجھے پکڑے گا، تو تم کیا کرنا، میری مدد مت کرنا جب اللہ مجھے پکڑے گا، کیونکہ اللہ ضرور پکڑے گا اگر میں نے واقعی اس کو گھڑا ہے، تو میں تم سے نہیں کہوں گا کہ تم میری مدد کرو۔ اور اللہ کیوں پکڑے گا، سورت حاقہ آیت 44 سے 47 آپ اس کو نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ उसके मानी क्या है? सूरत हा का आयत 44 से 47 तक अल्लाह ताला ये बात बताते हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मतलब इसको घर लेंगे तो फिर होगा क्या कि हम उसके दाएं हाथ से इसको पकड़ेंगे, फिर हम उसकी शह रग को काट देंगे और फिर कोई भी जो है हमें जो है ये काम करने से जो है वो रोक नहीं सकेगा, आजिज नहीं कर सकेगा। और इसलिए तो बार बार कहा जाता है ना कि इनसे ऐलान कर दीजिए, ऐलान बरात। तो गोया के इतनी बड़ी बात करने पर अल्लाह ऐसे थोड़ी छोड़ देगा। तो यहां पर भी यही बात कही जा रही है कि तुम्हारे पास ना कोई ताकत है, ना कोई कुदरत है, ना मैं तुमसे मदद मांगूंगा कि तुम मेरी मदद करो। तो तुम्हारा हाल क्या है? हुआ आलमु बिमा तुफीदू नफी, के तुम जो है जो भी बातें बनाते हो, जो तुम राई का पहाड़ बनाते हो, और तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि जादूगर या कुरान को जादू, मुझे जादूगर, या फिर ये कि मैंने इसको घड़ लिया है, खुद बना लिया है। खुद तो वो कर ना सके, उनको कहा एक सूरत 10 सूरतें कुछ ही बनाकर लाकर दिखा दो, तो वो मिसाल पेश करने से जो थे वो आजिज रहे। तो क्या कहा कि अल्लाह इनको खूब जानता है जो ये बातें करते हैं। और फिर साथ ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी अहम बात क्या की कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और कहा कफा बही शहीदम बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही के लिए काफी है। कि असल में इनका जो इल्जाम था सिर्फ इल्जाम नहीं था बल्कि हट धर्मी था, बल्कि कट हुज्जती था। इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है अगर सारी दुनिया में किसी को झूठा कहे लेकिन अल्लाह के इल्म में वो सच्चा हो तो अल्लाह ही फैसला करेगा ना, तो ठीक है यूं करता हूं कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूं, अल्लाह काफी है गवाही के लिए मेरे और तुम्हारे दरमियान। वहुवल गफूरुर रहीम, और वो बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। तो इसके मानी क्या है कि तुम जो है इस फिक्रे के दो मानी है। पहले मानी ये है कि तुम शिर्क कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि कुरान जादू, और दूसरा मुझ पर इल्जाम कि मैंने इसको घड़ लिया है, इफ्तरा, कुरान को इफ्तरा का कलाम कहते हो। तो फिर भी अल्लाह तुम्हें पकड़ता नहीं है इतनी तुम्हारी जसारत पर, फिर भी अल्लाह का अजाब नहीं आता और तुम्हें एक सांस के बाद दूसरा सांस लेना नसीब है, हो रहा है। असल वजह यह है कि वो बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। दूसरा इसका मतलब क्या है कि जालिमों अब भी हठधर्मी से बाज आ जाओ, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है और जो कुछ तुमने अब तक किया है अल्लाह उसको माफ कर सकता है। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ये पैगाम देते हैं कि आप जो हैं अहले मक्का के सामने ये बात रख दीजिए। और वो क्या बात है कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, अंजाम क्या होने वाला है, कयामत कब आने वाली है, आखरत कब आने वाली है, इसकी सही खबर अल्लाह ही को है। क्योंकि अहले मक्का जो थे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते थे कि अगर हम तुम्हारा इनकार करते हैं, तुम्हारे साथ ये जो बुरा सलूक करते हैं और कुरान का भी इनकार करते हैं तो फिर कयामत क्यों नहीं आ जाती, फिर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आ जाता। और फिर बार बार कहते थे मता हाजल वादु इन कुंतुम सादिकीन, तो कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कह दीजिए मा कुंतु बिदअम मिनर रसूली, मैं जो हूं नहीं हूं बिदन नया मिनर रसूली रसूलों में से, मैं कोई नया रसूल तो नहीं हूं, रसूल जो है जमा है, रसूल वाहिद है, मैं रसूलों में से कोई नया रसूल नहीं हूं। इसके मानी क्या है, यानी मैं कोई पहला और अनोखा रसूल तो नहीं हूं बल्कि मुझसे पहले भी बहुत से रसूल आ चुके हैं। वमा अदरी, और मैं नहीं जानता, मा युफलु बी, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। युफलु मजारे मजहूल है, मेरे साथ क्या होने वाला है, वला बिकुम, और तुम्हारे साथ क्या किया जाने वाला है। अब ये जो है कि मेरे साथ क्या किया जाने वाला है, क्या होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, इसके क्या मानी है। एक मानी तो ये है कि दुनिया में मेरे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, कि मैं मक्का में रहूंगा या मक्का से निकलने पर मुझे मजबूर होना पड़ेगा, मैं निकाल दिया जाऊंगा, मुझे मौत तबई आएगी या फिर मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। और दूसरी बात जो है अहले मक्का के बारे में कि यहाँ दुनिया में तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हें जल्दी सजा मिलेगी या फिर तुम्हें लंबी मोहलत जो है वो दी जाएगी। तो एक इसके मानी ये हैं कि दुनिया के लिहाज से ये आयत का हिस्सा है कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा, मेरा क्या अंजाम होगा दुनिया में, मैं नहीं जानता। दूसरे इसके मानी आखिरत के लिहाज से हैं कि मेरा अंजाम ये कि मैं जन्नत में जाऊंगा और तुम्हारा अंजाम कि तुम आखिरत में जहन्नुम में जाओगे, मैं इस बात को नहीं जानता। जैसे हदीस में भी आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास सहाबा की वफात पर जब इनके बारे में हुस्ने जन का इजहार किया गया तो फरमाया, वल्लाहि मा अदरी वाना रसूलुल्लाह मा युफलु बी वला बिकुम। इसे ही बुखारी की रवायत है। अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह का रसूल होने के बावजूद इल्म नहीं कि कयामत को मेरे और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। तो किसी भी एक मुय्यन शख्स के कतई अंजाम के इल्म की नफी कि मैं नहीं जानता। अच्छा, इस हिस्से में दलील के लिए आप क्या है कि आप वो आयतें ला सकती हैं कि कयामत में होगा क्या, अंजाम लोगों का क्या होगा, ये बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला जानते हैं। तो गैब का इल्म जो है वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह के पास है। आपने जो है वो सूरत लुकमान के आखिर में भी पढ़ा कि क्या होने वाला है कल को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसी तरह एक ये बड़ी खूबसूरत हदीस है और ये हदीस जो है खारिजा बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह नो कहते हैं कि उम्मे अला ऐन लाम अलिफ हमजा, उम्मे अला या उला अंसार की एक औरत थी जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। इसने कहा कि जब अंसार ने मुहाजरीन की आबादकारी के लिए कुर्रा डाला तो आसमान बिन मजून का कुर्रा हमारे नाम निकला, वो हमारे पास रहने लगे, वो बीमार हो गए, हमने उनकी तीमारदारी की, आखिर इनका इंतकाल हो गया। हमने उन्हें कफन पहनाया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए। इस वक्त मैंने कहा, अबू साइब, ये उस्मान बिन मजून की कुनियत थी, अल्लाह तुम पर रहम करे, मैं इस बात की गवाही देती हूं कि अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, तुझे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने उसे इज्जत दी? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे मालूम नहीं। तब आपने कहा, उस्मान बिन मजून की मौत वाकया हो गई और मुझे इसकी भलाई की उम्मीद है, लेकिन यकीन के साथ मैं कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लेकिन मैं भी नहीं जानता कि इसके साथ क्या सुलूक किया जाने वाला है। ये वही जो मैंने सही बुखारी के अल्फाज आपको बताए थे ना, वल्लाहि मा अदरी वाना रसूलुल्लाहि मा युफअलु बी वला बिकुम, ये आपने अल्फाज कहे। उम्मे अला कहती हैं, अल्लाह की कसम इसके बाद मैंने कभी किसी की ऐसी तारीफ नहीं की। ये बुखारी की रवायत है। इससे क्या पता चलता है कि बाज लोगों के बारे में बहुत यकीन के साथ कहते हैं कि फलां तो पक्का जन्नती है, तो हम यकीन के साथ नहीं ऐसा कह सकते। हम कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि हम इसके बारे में अल्लाह से नेक गुमान करते हैं, हमें इसके बारे में अल्लाह से भलाई की उम्मीद है, इसकी बातें इसके अमल बड़े ही अच्छे जन्नती लोगों जैसे लगते थे, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह ही जानता है। तो किसी के बारे में भी यकीन से वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर दूसरी अहम बात, इल्ला ये कि कोई नसे सरीह मौजूद हो। कैसे नसे सरीह मौजूद हो? जैसे हमें जो है वो ऐसी अहदीस मिलती है, जैसे इसरा मुबशरा है ना, या साहबे बदर, या फिर जिन्होंने सुलह हुदैबिया के मौके पर जो है बैते रिजवान, यानी कुरान ने उनकी तारीफ की है, या फिर कुरान कहता है ना बदरी साहबा और बैदे रिजवान वाले साहबा के बारे में कि रदी अल्लाह अनहु, نا ان کی تعریف کرتا ہے. قرآن میں آپ پڑھیں گے بہت سی ایسی آیتیں جس میں آپ سورۃ آل عمران میں کچھ پڑھ چکی, کچھ آگے بھی, کہ اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار کی تعریف کرتے ہیں. ایک اور صحابی تھے, وہ ہو گئے تھے فوت کوئی تیر لگنے سے, اور لوگ یہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ تو جنتی ہے. تو اس پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ پتا چلا تھا کہ وہ تو جہنم میں ہے, کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز جو تھی وہ چوری کر لی تھی, ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. تو کسی کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. ظاہری طور پر بعض اوقات اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن نیت کیسی ہے, اس کا عمل کیسا ہے, اس کی جو کچھ بھی اس کے اندر چھپا ہوا دل کے ایمان کی کیفیت ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. تو یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ میں کوئی, پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی انوکھا اور نیا رسول نہیں ہوں, کیونکہ یہی نہیں کہ بس میں ہی جو ہے وہ رسالت کو لے کر آیا ہوں اور رسول بن کر آیا ہوں. اور پھر جو ہے وہ اہل مکہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے. تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, کہ میرے بارے میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے, کیونکہ میں جب تمہیں قیامت توحید کی بات کہتا ہوں تو تم جو ہے تعجب کے ساتھ جو ہے وہ انکار کرتے ہو, بلکہ توحید کی خبر اور جو ہے وہ آخرت کی خبر اور جو اللہ کی باتیں اس کی خبر تو تواتر کے ساتھ رسولوں سے بیان ہوتی آئی ہیں نا, تم سنتے ہی آئے ہو. تو جیسے پہلے رسولوں نے بتائی میں نے بتائی, اور میں غیب کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ ہونے والا ہے, اس کی خبر مجھے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی حالات کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو پھر میں کرتا کیا ہوں, ان اتبع الا ما یوحا, میں پیروی کرتا ہوں مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے الیہ, میری طرف. تو میں وحی کا اتباع کرنے والا ہوں, معنی کیا ہے کہ وحی کے ذریعے جو کچھ بھی مجھے بتا دیا جاتا ہے میں وہ کرتا ہوں. تو جو خبریں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی جاتی تھی, جیسے واقعہ عشق میں تقریباً ایک مہینہ رسول اللہ اور صحابہ پریشان رہے, پھر آپ کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعے. حضرت عائشہ صدیقہ کی برات جب نازل کر دی گئی تو آپ نے بھی لوگوں کو جمع کر کے بتا دیا, ہے نا. اور یہ بہت سے واقعات کہ جو خبر اللہ تعالیٰ نے, جیسے معراج کی آپ کو سیر کروائی, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا, تو اتنا آپ نے بتا دیا. وما انا, اور نہیں ہوں میں, الا نذیر مبین, مگر ڈرانے والا کھلا. تو میری اصل حیثیت کیا ہے کہ میں نذیر مبین ہوں, کہ میں دائی ہوں. میں علم اور عمل میں تو وحی کا اتباع کرتا ہوں, لیکن میری حیثیت یہی ہے کہ میں صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے, کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادوگر ہیں اور دوسرا قرآن جادو ہے, پھر یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے قرآن کو گھڑ لیا ہے, تو اس الزام کی, جو الزام افتراء ہے, اس کی تردید کے لیے کہا کہ کل آپ کہہ دیجئے, آ رہی تم, کیا تم نے دیکھا, ان کانا من عند اللہ, کہ اگر یہ ہے اللہ کی طرف سے, کیا چیز, قرآن, وکفر تم بہی, اور تم نے اس کا انکار کیا. کہ تمہارا حال یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ تو ہے اللہ کی طرف سے اور تم ہو اس کے منکر. تو یہ ہے دلیل کہ یہ اللہ کی طرف سے اور تم ہو اس کے انکار کرنے والے. اور دلیل پر دلیل کیا ہے, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ, وَشَهِدَ, اور گواہی دی, شاہدن, ایک گواہ نے, مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ, بنی اسرائیل سے, عَلَى مِثْلِهِ, کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے جو ہے وہ اس جیسی کتاب کی گواہی دی. عَلَى مِثْلِهِ کے معنی کیا ہے, اسی طرح کی ایک کتاب, کہ بنی اسرائیل میں سے جس گواہ نے گواہی دی تو وہ بھی ایک ایسی ہی کتاب کو پڑھنے والا تھا نا, تو اس نے کیا کیا, کیسے گواہی دی, فَآمَنَا, پس وہ ایمان لے آیا, وَاسْتَكْبَرْتُمْ, اور تم نے تکبر کیا اور تم نے انکار کیا. تم بھی تو بنی اسرائیل میں سے ہو, اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ جو ہے وہ ایمان لے آیا. تو یہ شاہدہ شاہدم من بنی اسرائیل کون تھا, اس سلسلے میں مفسرین کی جو رائے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ شاہد سے کس طرف اشارہ ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. اور عبداللہ بن سلام جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور چند باتیں پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی لوگ بہتان تراش ہیں, آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کی مگر انہیں میرے مسلمان ہونے کی خبر نہ ہو. چنانچہ یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے, آپ کیا چاہتے تھے, آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ تمہاری عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا رائے ہے. وہ کہنے لگے ہم سب سے اچھا اور اچھے کا بیٹا اور ہم سب سے افضل اور افضل کا بیٹا ہے. آپ نے پوچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے خدا نہ کرے, اللہ اسے اسلام سے محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا اور یہود نے پھر یہی جواب دیا. اب عبداللہ بن سلام جو وہیں چھپے بیٹھے تھے شہادتین پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے. یہودی یہ کلمے سن کر کہنے لگے عبداللہ تو ہم سب سے خراب آدمی اور خراب آدمی کا بیٹا ہے, اور انہیں برا بھلا کہنے لگے. عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے عبداللہ بن سلام ہے, لیکن دوسرا گروہ اعتراض کرتا ہے کہ عبداللہ بن سلام نہیں ہے. وہ کیوں اعتراض کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سورت کون سی ہے, مکی, اور عبداللہ بن سلام جو تھے وہ مدینہ میں اسلام لائے اور بہت دیر بعد اسلام لائے. مطلب مدینہ میں جب آپ گئے تو دعوت دی تو پھر اسلام لائے نا, تو یہ مکہ میں بہت پہلے نازل ہو چکی تھی. اچھا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے, کہ گواہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے, کہ سب سے بڑے گواہ تو وہ خود ہی تھے نا, کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے نا, ہزاروں سال پہلے انہوں نے یہ گواہی دی تھی. تو اب اصل میں جو ہے جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ آگے آپ پڑھیں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قول بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے الگ سے کیا ہے, تو حوالہ ایسے دینے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ تورات میں جو ہے وہ قرآن کا ذکر ہے, رسول کا ذکر ہے کہ رسول بھی آئے گا اور کتاب آئے گی. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے ایک تیسرا گروہ ہے, اور تیسرا جو گروہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ہے نا شاہد شاہد, انہوں نے شاہد کو اسم جنس کے معنی میں لیا, اور جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بنی اسرائیل کا کوئی خاص شخص نہیں, نہ تو عبداللہ بن سلام نہ موسیٰ علیہ السلام, بلکہ بنی اسرائیل کا ایک عام آدمی. تو اسم جنس ہے جتنے بھی بنی اسرائیل میں سے ایمان لائے, جیسے کہب بن احبار بھی تو لائے نا, عبداللہ بن سلام بھی پھر اس میں آ جاتے ہیں, کیونکہ بعض آیتیں کسی خاص موقع پر نازل تو ہوتی ہیں لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی جو بھی ایمان لانے والے ہیں سارے اس سے جو ہے وہ مراد ہیں. تو یہ رائے جو ہے یہ زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے. اور ایک رائے یہ بھی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے مراد ہے. بہرحال تو بات کیا ہے کہ جو بھی بنی اسرائیل میں سے ایمان لایا تو انہوں نے جو ہے ان کے پاس بھی اسی طرح کی کتاب تھی تو وہ ایمان لے آیا. اور واستکبر تم اور تم نے کبر مانگا استکبار, یہ بھی باب جو ہے وہ ہاں باب استفال سے ہے. یہ تو معنی کیا ہے کہ تم نے جو ہے وہ کبر مانگا, تو کبر مانگنا گویا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور یاد رکھیے گا کہ پچھلی سورت میں بھی ہم نے یہ پڑھا سورت یاسیہ میں بھی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی کو ختم نہ کرنا یہ برائیوں کی جڑ ہے. اور اہل مکہ بھی اپنے آپ کو کیونکہ بڑا سمجھتے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کی قوم کو. تو اہل مکہ نے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو بھی ایمان لے آئے, تو اصل بات کیا تھی क्योंकि अहले मक्का क्या करते थे, बनी इसराइल के लोगों से पूछते थे ना कि इनके पास तो आसमानी किताब मौजूद है तो इनसे पूछें। तो उनमें से ईमान लाने वाले ईमान ले भी आए, फिर भी इन्होंने मान करना दिया।